हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। जब शंकर जी भी ध्यान छोड़ दिए तो हम लोग भी आज आवृत्ति छोड़ रहे हैं, सीधे कथा कहेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो श्री कश्यप जी अपनी पत्नी माता देवहूति से, अदिति से, सॉरी देव माता अदिति से पयोव्रत की विधि बता रहे हैं। तो उस विधि का वर्णन कल हुआ था, कुछ बाकी रह गया है उसको आज पूरा कर रहे हैं। उन्होंने मंत्र बताया, पूजा की विधि बताया, और अब आगे निषेध पर कुछ काम बता रहे हैं जिसको नहीं करना चाहिए। किसी भी समाज में या किसी भी नियम पालन में दो प्रकार के नियम होते हैं। एक होता है त्यागने का, तो इसको निषेध कहते हैं, और करने लायक जो नियम होते हैं उनको विधि कहते हैं। विधि और निषेध, जैसे हम लोगों के इष्कान में विधि है भगवान का नाम जप करना, स्नान करना, भागवत पढ़ना, भगवान की पूजा करना, टू डू, इसको करना। और नहीं करना निषेध क्या है, चार महापाप का निषेध है, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन और अवैध संबंध में, ये चार निषेध बताए जाते हैं। यहां पर भगवान का भजन करने वाले को, भगवान की पूजा करने वाले को निषेध बताया जा रहा है। वर्जयेद असदा आलापम, असत आलाप वर्जयेद। आलाप का अर्थ होता है बातचीत करना, सुनना। इसके दो अर्थ है, असत लोगों से जो अभक्त हैं, पापी हैं, उनसे बात नहीं करना चाहिए। और यह वैष्णवों को दैनिक जीवन में भी सीखना चाहिए, पापियों से बात नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति यह कह सकता है कि गाय का दूध पीना भी खून पीने के समान ही है, इतना डव माइंडेड आदमी, तो किसी स्त्री को कह सकता है कि तुम बच्चे को दूध पिला रही हो तो अपने देह से, तुम्हारे देह से कोई काट करके खून निकाले तो भी सेम ही है, और उसके साथ क्या बात करें उस गधा के साथ, जो इतनी बात समझ में नहीं आती है। गधा के साथ भी बल की बात किया जा सकता है, लेकिन ऐसे अधम के साथ नहीं। ये कहते हैं कि गाय के खून में और दूध में क्या अंतर, इतनी बात समझ में नहीं आती। गाय आनंद से दूध देती है, अपने बच्चे को देती है या अपने पालने वाले पोषने वाले को भी देती है, वो दूहता है वो बोलती नहीं, आनंद से देती है। और भगवान ने उसके लिए निश्चित किया है, बछड़े को कुछ दूध दे करके और उसको घास दिया जाए, गाय को घास दिया जाए, घास से सेवा की जाए, भगवान का बनाया हुआ रूल है, तो उसे उचित ढंग से करना चाहिए। लेकिन यह कह देना कि गाय का खून पीना या दूध पीना दोनों एक, ऐसे लोगों को समझाया नहीं जा सकता, ऐसे मूर्खों को बात के द्वारा नहीं समझाया जा सकता, इसीलिए इन लोगों से बातचीत करना ही नहीं चाहिए। वो अपनी फिलॉसफी जहां झाड़ना है झाड़ते रहे, बात नहीं करना चाहिए, पापियों से बात नहीं करना चाहिए। ये कश्यप जी बता रहे हैं असत आलाप, और बहुत बुरी बातें नहीं बोलनी चाहिए संसार की। जितना दिन व्रत करना है, भक्ति करनी है, तो संसार की बातों का आलाप वर्णन नहीं करना चाहिए। कई संसार में घटनाएं होती रहती हैं, टीवी में, न्यूज़पेपर में निकलती रहती, उसको वर्णन करने की जरूरत नहीं है। कीर्तनियो सदा हरि, भगवान के ही गुणों का वर्णन करना चाहिए। तो वर्जित असदा आलापम, असत आलाप नहीं करना चाहिए। कभी खराब बातें भगवान के गुण कीर्तन के अलावा दूसरी बात नहीं करनी चाहिए। भोगन उच्चा वचंश तथा वर्जयत, भोगों को छोड़ देना चाहिए उतने दिन। उच्च या अवच, अवच का अर्थ होता है नीच और उच्च का अर्थ होता है बड़ा बड़ा। जैसे भोग है हाथी पर सवार होना, घोड़े पर सवार होना, नेपाल का कंबल ओढ़ना, मतलब अच्छा ऊनी कंबल ओढ़ना, इसका मतलब ये है ये उच्च भोग है। हाथी पर चढ़ना, उच्च अच्छा कंबल ओढ़ना और बहुत दामी रेशमी कपड़ा पहनना व्रत के समय, और जो भी है या बहुत अच्छा अच्छा खाना बना करके या कहीं से खरीद करके, नहीं ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो खाने के लिए कहा गया वही खाना चाहिए, अच्छा भोजन नहीं करना और बहुत सुंदर कपड़ा नहीं पहनना, चादर नहीं ओढ़ना, सवारी नहीं करना, इसको उच्च भोग कहते हैं। नीच भोग, नीच भोग भी है अवच्छ भोग, अवच्छ का अर्थ है बहुत छोटा तुच्छ भोग, उसी में कुछ लोग आनंद लेते हैं। जैसे सुअर माल खाने में आनंद लेता है, वैसे ही दूसरे लोग कुछ ऐसे होते हैं जो छोटे छोटे भोगों में भी आनंद लेते हैं, जैसे खैनी चूसने में, ये तंबाकू में क्या रस है, लेकिन उनके लिए वो भोग है, वो उसको अच्छा मानते हैं, इसको अवच्छ भोग कहते हैं। या गधा पर चढ़कर घूमना, गधा की सवारी भी एक भोग है, लेकिन अगर कोई चढ़ करके आवे और कहे कि मैं तो गधा पर चढ़कर आया हूं, तो लोग सोचे हमको मत छुओ, कहेंगे ना गांव में ऐसे कहते हैं। तो छोटे छोटे जो भोग हैं उसको भी नहीं भोगना चाहिए और बड़े बड़े भोगों को भी नहीं, भगवान के भक्ति में रहना चाहिए। वर्जयेत असदालापन, भोगान उच्चा वचंस तथा अहिंस्र सर्वभूतानां वासुदेव परायण। और व्रत के दिन में कभी भी भूल कर भी किसी भी जीव को वचन से या शरीर से या मन से भी दुख नहीं देना चाहिए, सताना नहीं चाहिए, किसी जीव की हिंसा नहीं करनी चाहिए। ऐसे भक्त को तो चाहिए कि जीवन भर हिंसा न करे, लेकिन खासकर व्रत के दिनों में 12 दिन तक बिल्कुल किसी जीव को दुख नहीं देना चाहिए, किसी को सताना नहीं चाहिए। जान मारने की बात तो बहुत दूर है, यह जान न मारना, इसके लिए हिंसा शब्द का प्रयोग नहीं है। यहां है किसी भी तरह से अपने आचरण से किसी जीव को तकलीफ न देना, ये अर्थ है। और जान न मारना किसी जीव का, वो तो गधों को सिखाया जाता है, वो आदमी को नहीं सिखाया जाता है। जीव हत्या मत करो, हत्या मत करो, ये आदमी को नहीं सिखाया जाता है वास्तव में, सॉरी ये आदमी को सिखाया जाता है, वैष्णव को नहीं। वैष्णव का दर्जा बहुत ऊंचा होता है। यह हिंसा का अर्थ है किसी को दुख न देना व्रत में, वैष्णव का यह व्रत। एक बार श्रील प्रभुपाद जी से किसी व्यक्ति ने कहा कि प्रभुपाद जी, स्वामी जी क्या आप हमको ब्राह्मण बना सकते हैं? प्रभुपाद जी तो भक्तों को बनाते ही हैं, लेकिन उन्होंने उसको कहा कि हाँ बना सकते हैं, तो क्या उपाय है बनाने का? तो प्रभुपाद जी ने कहा पहले आदमी बनकर आओ तब ब्राह्मण बनाएंगे। तो वो कहा कि हम आदमी नहीं है, ना जब तक तुम मांस खाते हो, शराब आदि पीते हो, तब तक तुम एनिमल हो, पशु हो, तो ये सब पाप छोड़ करके आदमी बनो तब मैं ब्राह्मण बना दूंगा। तो वास्तव में हिंसा शब्द का जो प्रयोग होता है, श्रील प्रभुपाद जी को एक बार झांसी में ये अवसर दिया गया था हिंसा पर बोलने का। महात्मा गांधी का अहिंसा आंदोलन चल रहा था, तो श्रील प्रभुपाद जी को हिंसा पर बोलने के लिए कहा गया, अहिंसा पर। तो प्रभुपाद जी सीधा कहे कि हिंसा का अर्थ है किसी के अधिकार का हनन करना, इसको हिंसा कहा जाता है। प्रत्येक जीव को जन्मसिद्ध अधिकार है कृष्ण को समझने का, भगवान को जानने का और सुखी होने का, सदगति प्राप्त करने का। लेकिन अगर कोई समाज लोगों को भगवान की भक्ति की शिक्षा नहीं देता है, सुविधा नहीं देता है, तो वह लोगों की हिंसा कर रहा है। भगवान की भक्ति का प्रचार नहीं करने वाला व्यक्ति वो भी हिंसक ही है। और ये सिनेमा टीवी आदि द्वारा वासनाओं को भड़काने वाला चित्र दिखाना, सब ऐसे ऐसे लोगों को भोगों की वासना हो जाए, धन की वासना, स्त्री की वासना, और भगवान के भक्ति से वो हट जाए व्यक्ति, यह वास्तव में जीव की हिंसा है। उसका सहज जो अधिकार है, स्वरूप है, उसका हनन किया जा रहा है। तो यह हिंसा का अर्थ है वैष्णव के लिए किसी जीव को कभी भी दुख न देना। वासुदेव परायण, हमेशा भगवान वासुदेव की भक्ति में लगा रहे, उनकी शरण में। परायण का अर्थ उन्हीं में वाणी लगी रहे, उन्हीं के दर्शन के में नेत्र लगे रहे, हाथ पूजा में, श्रवण भगवान की बात सुनने में, कथा सुनने में। 12 दिन तक कथा रोज होना है और नृत्य और गीत भी होना है, ये विधि आ रही। 12 दिन तक वैष्णवों को बुलाकर उनके द्वारा गीत गवाना, नृत्य करना, ये सब दैनिक नियम है। तो वासुदेव परायण का अर्थ है कि कृष्ण के अलावा सपने में भी कुछ नहीं सोचना, हमेशा कृष्ण कहीं गुणगान, चिंतन, श्रवण में लगे रहना, ये वासुदेव परायण। वासुदेव का अर्थ है वसुदेव जी के पुत्र कृष्ण। तो कृष्ण परायण रहना चाहिए। त्रयोदश्याम अथो विष्णु स्नपनम पंचकायर विभो, तो 12 दिन तक ये व्रत करे जो पहले नियम बताए गए। त्रयोदशी के दिन भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान करावे। पंचामृत प्रसिद्ध है, गाय घी, दूध, दही आदि, मधु, ऐसा पंचामृत कहते हैं। इसके द्वारा भगवान को स्नान करावे। कारेत शास्त्र दृष्टि न, कारेत कारेत का अर्थ है कि शास्त्र दृष्टि न, ब्राह्मणों के द्वारा, भक्तों के द्वारा, जो लोग शास्त्र विधि जानते हैं उनके द्वारा अभिषेक करावे। विधिना विधि को विदय, विधि से करावे जो नियम है। और किनके द्वारा? विधि को विदय, जो विधि को, नियम को जानते हैं, उन भक्तों के द्वारा भगवान का स्नान कराना चाहिए। पूजन च महतिम कुर्यात् वित्त साठ्य विवर्जित, और त्रयोदशी के दिन कुछ विशेष इंक्रीज्ड पूजा भगवान की करनी चाहिए, ज्यादा पूजा करनी चाहिए। उस दिन धन का लोभ छोड़ देना चाहिए। वित्त साठ्य, यदि धन है, मान लीजिए किसी का रुपया है, बैंक में है, इधर उधर है, तो अब लोभ न करे कि उसमें से नहीं खर्च करेंगे, वो जमा रहेगा। यदि पैसा नहीं है तो वो भी व्यक्ति व्रत कर सकता है, लेकिन उसके लिए जैसा ऊपर ही कहा गया है कि विभवे सती, यदि धन हो तो ऐसा ऐसा करे, अगर धन न हो तो भगवान को एक तुलसी अर्पण करके भी उनकी कृपा प्राप्त की जाती है। ये केवल प्रणाम कहते हैं, धनी के दान, गरीब के स्नान। तो धनी लोग दान करते हैं जो फल मिलता है, गरीब आदमी जमुना जी में जाकर केवल स्नान करे तो वही फल मिलता है। ये लोक में प्रसिद्ध बात, मतलब भगवान की भक्ति कोई भी कर सकता है। कोई ये न सोचे कि अरे जिसके पास धन होगा वो ये करेगा, वो करेगा, ये करेगा। हाँ, कम से कम इतना धन होना चाहिए कि दूध खरीद करके पी सके, क्योंकि पीना तो जरूरी है। बाकी भगवान की पूजा में जो भी जुट रहा है, अगरबत्ती है, तुलसी दल है, उसके द्वारा पूरा किया जा सकता है। फूल, फूल तो भारतवर्ष में लोग मांगने पर भी दे देते हैं, कहीं अब मांगिए कि भगवान की पूजा करनी है तो लोग दे देते हैं, ठीक है ले रहे। ऐसा नहीं है कि गरीब व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं करेगा, पयोव्रत नहीं कर सकता है। और पयोव्रत वास्तव में केवल पुत्र प्राप्ति के लिए ही नहीं किया जाता है। कोई भी कामना हो, कोई भी वस्तु की इच्छा हो, वो व्यक्ति इसको करके मनोरथ पूरा कर सकता है भगवान की कृपा से, कुछ भी इच्छा। अरे जब वैकुंठ मिल सकता है, स्वर्ग मिल सकता है, तो पृथ्वी के भोग मिलना कौन बड़ी चीज। यदि कोई चाहते हैं कि हम देश में कोई मंत्री बने, सांसद बने, ये बने वो बने, तो उनको ये व्रत करना चाहिए, भगवान की कृपा से वो बन जाएंगे। ये अमोघ व्रत है और इसमें कोई भेद नहीं है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है। शिवसेना वाले कर सकते हैं, कांग्रेस वाले कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। कोई इसमें ये पाबंदी नहीं डालेगा, एक नहीं नहीं यही आदमी करे, ये ना करे, वो ना करे। आप शुरू से ही देख ही रहे हैं, भगवान की शरण लेनी चाहिए। भगवान ऊंचा पद देते हैं, धन देते हैं, मान देते हैं, दीर्घ आयु देते हैं, सब कुछ देते हैं, स्वजनों के लिए भी किया जाता है। माता अदिति अपने पुत्रों के लिए व्रत करेगी, इंद्र को स्वर्ग का राजा बनाने के लिए, और बन गए इंद्र, भगवान को राज मिल गया। किस बल से? उन्होंने कुछ नहीं किया था, उनकी माता ने यह व्रत किया था, जैसा वर्णन आगे आएगा। लेकिन जो धनी है, भगवान ने जिनको कृपा करके धन दिया है, तो उनको चाहिए कि त्रयोदशी के दिन पूजा भगवान की विशेष रूप से करें, धन का मोह न करें। तो उस दिन चरु पकार करके भगवान विष्णु को संतुष्ट करें, हवन विशेष रूप से करना चाहिए। चरु खीर पका करके भी, जैसे ऊपर कहा गया, उस विधि से भगवान का हवन करें। भगवान को सिपी विष्ट कहते हैं, सिपी का अर्थ होता है रश्मि, किरणें सूर्य की या प्रकाश, उसमें भगवान रहते हैं। अथवा सिपी का हृदय भी होता है जीवों का, समस्त जीवों के हृदय में है भगवान, तो उनकी पूजा करनी चाहिए, यज्ञ करना चाहिए। श्रितेन तेन पुरुषम जजे तुसमाहित, तो खूब अच्छे हुए, अच्छी तरह से पके हुए खीर से भगवान की पूजा करनी चाहिए, मतलब हवन करना चाहिए और खिलाना चाहिए। नैवेद्यम चाते गुणवत् दद्यात् पुरुष तुष्टिदम्, और भगवान को प्रसाद खिलावे, खूब अच्छा बना करके भगवान को भोग दे, नैवेद्यम निवेदन करे। चाते गुणवत् अति गुणवत्, कश्यप जी अति गुणवत्, यदि धन है तो खूब अच्छा सरस भोग बनाना चाहिए भगवान के लिए। जब भगवान प्रसाद नहीं खाते, प्रसाद तो हम लोग खाते हैं, भगवान भोग खाते हैं, तो उनको पहले भोग लगाते, तो अति गुणवत् नैवेद्य निवेदित करना चाहिए। जो पुरुष तुष्टिदम, भगवान को संतुष्ट कर दे, यदि खूब श्रद्धा से धन का मोह न करके खूब अच्छा बनाया जाए भोग, तो भगवान संतुष्ट होते हैं। इससे नहीं कि बहुत अच्छा प्रसाद बना, भोग बना इसलिए, बल्कि उस भक्त के भाव से वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं कि हृदय से हमारी सेवा कर रहा है, तो ऐसा करना चाहिए। आचार्यम ज्ञान संपन्नम वस्त्रा भरण धेनु भी तोषे द्वितीजस चैव तद विद्याराधना हरे। और जो आचार्य हैं जिन्होंने ये व्रत कराया, उनको चाहिए कि वस्त्र आभरण, ये सब धन रहने पर वस्त्र अलंकार और धेनु भी गाय दान करे। अलंकार दे, सोना चांदी दे, हीरा दे, और वस्त्र दे, और उनके साथ यज्ञ कराने वाले जो भी ऋत्वी जाते हैं, जो आचार्य नियुक्त करते हैं, ब्रह्मा उद्गाता आदि जो होते हैं चार, उनको ऋत्वीज कहते हैं, तो ऋत्वीजों को भी यथा योग्य दान दे। और उसको ऐसा समझे कि इनको संतुष्ट करना हरि का, हरि को संतुष्ट करना, भगवान की ही आराधना समझ करके, भगवान का सुख समझ करके उनको दे। भोजे तान गुणवत्ता सदन नहीं न सुचिस्मित, प्रिय तुम बहुत ही सुंदर आचरण वाली स्त्री हो, तुम इस बात को समझोगे। सुचिस्मित हे सुंदर मुस्कान वाली, ये कह रहे हैं अर्थात तुम बहुत शुद्ध चरित्र की हो, तो तुम्हें चाहिए कि भोजे तान गुणवत्ता सदन में न, बहुत सरस भोजन करावे उन ऋतिजों को और आचार्य को। और सदन, एक तो स्वादिष्ट होना चाहिए और अन्न जो हो वो सदन होना चाहिए, सत अन्न, मतलब बहुत बुरी कमाई का पैसा नहीं होना चाहिए भगवान को भोग लगाने के लिए। उस व्रत में अपने परिश्रम की कमाई उसको सदन कहते हैं, ये नहीं कहीं किसी की हत्या करके और पैसा लिया, और या चोरी करके बहुत किसी को ठग करके सता करके और उस पैसे से भगवान की पूजा करे, भगवान प्रसन्न नहीं होते। जिस सदन्य शब्द का प्रयोग किया गया, और गुणवत्ता, गुणवत्ता का अर्थ है छह रस, षड रस, बहुत स्वादिष्ट भोग बनाए भगवान के लिए, और वही प्रसाद ब्राह्मणों को खिलाना चाहिए सदन। और ये तत्र समागता, और भी जो ब्राह्मण वहां आए बुलाने से अथवा बिना बुलाए भी जो आ जाए सबको खिलाना चाहिए। दक्षिणाम गुरुवे दद्यात, और गुरु को ही आचार्य को ही यहां कहा जा रहा है, गुरु को दक्षिणा देनी चाहिए और ऋतुजों को भी जत्था अर्हता। तो प्रश्न होता है सबको ये कहीं बराबर देंगे, ये कहीं समान पैसा या भोजन तो एक समान होगा, उसमें भेद नहीं है, लेकिन दक्षिणा देने में जथा अर्हतः जथा योग्य, जथा योग्य का अर्थ उधर से भी योग्यता है और देने वाले के भी फंड पर बात निर्भर करता है। उसका फंड कितना अलाउ कर रहा है देने का उसके अनुसार करे, और उधर से भी अब चेला है तो चेला को चेला जैसा देंगे ब्राह्मणों को, सब जथा रहता जथा जो समझ लेना चाहिए देश काल के अनुसार, लेकिन देना चाहिए। और अब दक्षिणा गुरुवे दद्यात् ऋतुजश्च जथा रहता अनाद्य नाशपाकांश प्रीलयन समुपागतम, और उस यज्ञ में अपने आप या बुलाए हुए जितने भी लोग आवे उनका जथा योग्य सत्कार करना चाहिए, उनको खिलाना चाहिए अन्न आदि से, भोजन, अन्न माने भोजन। यहां तक कि उस यज्ञ में पयोव्रत में कोई चंडाल भी आवे, कोई भी हीन जाति का आवे, हीन वर्ण का आवे, कोई भी, सबको खिलाना चाहिए बहुत स्नेह से। प्रीणयत समुपागतान, समुपागतान उस यज्ञ में आए हुए, उस अवसर पर आए हुए सबको भोजन देना चाहिए। देखिए और चीज में भेद हो सकता है लेकिन भोजन में भेद नहीं करना चाहिए, ये नियम है। तो सबको भोजन आदि के द्वारा संतुष्ट करे, और देने की शक्ति हो तो वो भी दे। आश्वपाकांश, कुत्ते का मांस खाने वाला चंडाल आदि को भी देना चाहिए कोई भी व्यक्ति आवे। भुक्तवत्सु च सर्वेशु दीनांध बधिरेशु च, और जब सभी खा लें त्रयोदशी के दिन सब लोग खा लें, यहां तक दीन अंध बधिर जो विकलांग है हैंडीकेप सब खा लें, दीनहीन रोगी कुष्ठ जिसको हो चाहे कुछ भी, दीन अंध कृपण बेचारे लचार गरीब सभी जब खा लें, विष्णु तत्प्रेरणम विद्वान भूंजित शब्द, ये समझे कि उनको खिलाना भगवान को डायरेक्ट खिलाना है। कश्यप जी बता रहे हैं इन दीनहीनों को खिलाना और ब्राह्मणों को खिलाना गुरु को खिलाना, इसको डायरेक्ट भगवान की आराधना समझनी चाहिए। और जब सब खा ले, एक एक व्यक्ति खा ले, तब भूंजित सहबंधु भी अपने परिवार के और अपने रिलेटिव लोगों के साथ तब खाए। कितनी सुंदर शिक्षा दी जा रही, सब जब खा ले, एक एक आदमी को देखना चाहिए। गृहस्थ का वास्तव में धर्म है, हमारे घर के आसपास कोई भूखा तो नहीं है। पहले लोग जब भोजन के लिए घर पर तैयार होते थे तो घंटा बजाते थे गृहस्थ लोग, कोई व्यक्ति अगर भूखा दुखा हो तो आ जाए, तो उसको खिला करके तब खाते थे। ये धर्म है, इससे आयु बढ़ती है, इससे धन बढ़ता है, जस बढ़ता है, तो सबको खिला करके तब अपने बंधुओं के साथ खाए। इसका अर्थ है कि जितने परिवार के लोग या रिलेटिव हैं वे सब सेवा में लगे हुए हैं, प्रसाद सर्व करने में और सब करने में, तो सबके बाद अंत में खाए। नृत्य वादित्र गीत स्तुत भी स्वस्ति वाचक कार्य तत्कथा भी पूजन भगवतो अनुअहम, और जहां तक भगवान की पूजा की बात है तो उस दिन विशेष करें, लेकिन प्रथम दिन से ही नृत्य वादित और गीत होना चाहिए। नृत्य नाच होना, भगवान के कीर्तन में जस गान में नाचना और बाजे बजाना खूब, तो गीत के अनुसार और गीतश्च, खूब गीत होना चाहिए, भगवान के भज कीर्तन होना चाहिए, नृत्य बाजा, और स्वस्ति वाचक स्तुति भी, और स्वस्ति वाचन करने वाले ब्राह्मणों के द्वारा भगवान की स्तुति करनी चाहिए। नौ श्लोक जो लिखे गए हैं वो बोले, या गोविंद आदि पुरुषम जो भी स्तुति है उसके द्वारा भगवान की पूजा करें। और कार्य तत्कथाभिश्च, और भगवान की कथाओं द्वारा भगवान की पूजा होनी चाहिए। भगवान की कथा होना यह भगवान की पूजा है, यहां पर यह बात कही जा रही है। भगवान इसे प्रसन्न होते हैं, जब जनता को भगवान का संदेश, भगवान का गुण रहस्य सब मिलता है तो भगवान इसे बहुत प्रसन्न होते हैं। गीता में तो उन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति मेरे द्वारा उपदिष्ट इस परम रहस्य को मेरे भक्तों में कहेगा उससे बढ़ करके मेरा प्रिय कोई हुआ है न होगा, ऐसा भगवान कहो कि कथा होनी चाहिए। किसी भी उत्सव में पर्व में कथा जरूर होनी चाहिए, और कीर्तन नृत्य बाजा बजाना, कार्य तत्कथा भी से पूजा भगवतो अनुहम प्रतिदिन करना चाहिए। एतत् पयोव्रतम नाम, इसका नाम है पयोव्रत। अब कश्यप जी कहते हैं विधि बता करके, अब इसकी महिमा बता रहे हैं। एतत् पयोव्रतम नाम पुरुषाराधनम परम, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ये सबसे बड़ा साधन है। अपनी पत्नी से वो बोल रहे हैं, उसने कहा था कि भगवान कैसे खुश होंगे वो बताइए, कहते हैं भगवान को प्रसन्न करने का सबसे महान साधन है, और इसका उपदेश भी सबसे महान व्यक्ति ने किया है। पिता महेन अभिहितम, हमारे पितामह श्री ब्रह्मा जी ने इसका उपदेश किया। ऐसे जैसे तैसे थर्ड क्लास का आदमी नहीं उपदेश कर दिया, ये पूजा करो, इसकी आराधना करो, ये विधि है, ये करो ये करो। इधर तो घर घर में उपदेशक भरे पड़े, अरे पयोव्रत का उपदेश तो ब्रह्मा जी ने किया है, तो उपदेशक की दृष्टि से भी यह व्रत सबसे श्रेष्ठ। पिता महेन अभिहितम मया तो समुदायतम, तो मैंने अपने पितामह से जो कुछ सुना विधि, ठीक उनकी सुनी हुई विधि को ही मैं बता रहा हूं, अपने से कुछ भी नहीं बताया। एक कश्यप जी कह रहे हैं इस व्रत की महानता को बता रहे हैं, जिस विधि का उपदेश स्वयं ब्रह्मा जी ने किया है और भगवान को प्रसन्न करने का, तो ब्रह्मा जी जानते हैं ना कि भगवान कैसे प्रसन्न होंगे, और वास्तव में जीव को किसको प्रसन्न करना चाहिए, कौन भजनीय है, इन सब बातों को ब्रह्मा जी से बेटर कौन जानेगा। तो ब्रह्मा जी उपदेश किए हैं, हम लोग जिस परंपरा में हैं वैष्णव परंपरा में, वो ब्रह्मा जी के द्वारा चलाई हुई परंपरा है, संप्रदाय है ब्रह्मा जी। बीच में चैतन्य महाप्रभु हुए गौड़ देश में, और उसके दोनों के बीच में मध्वाचार्य आए, तो इसलिए इसको ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय कहते हैं, इस तरह से आता है। तो हम लोगों के आदि गुरु ब्रह्मा जी हैं, ये हम लोगों का भाग्य है कि ब्रह्मा जी का डायरेक्ट उपदेश भागवत में जहां तहां मिलता है, और एक किताब भी है ब्रह्म संहिता जिसमें ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण की बहुत सुंदर स्तुति की है, इसको ब्रह्म संहिता कहते हैं। और प्रत्येक श्लोक में वे कहते हैं गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, मैं आदि पुरुष सर्वेश्वरेश्वर स्वयं भगवान गोविंद का भजन करता हूं, स्पष्ट कह रहे हैं। जब ब्रह्मा जी कृष्ण का भजन कर रहे हैं तब तो मनुष्यों को तो करना ही चाहिए, मनुष्यों को ज्ञान नहीं होता है इसलिए जहां तहां अपना इष्ट चुन लेते हैं, और उन्हें हमेशा विफलता और दुख ही मिलता रहता है। ब्रह्मा जी के चरण चिन्ह पर चलना चाहिए। तो कश्यप जी कह रहे हैं कि इस विधि का उपदेश हमारे पितामह ब्रह्मा जी ने किया, और भगवान विष्णु को कृष्ण को रिझाने के लिए सबसे श्रेष्ठ साधन है। तुम चानेन महाभागे सम्यक चीर्णेन केशवम आत्मना शुद्ध भावेन नियतात्मा भजाव्ययम्। तुम च, जैसे ब्रह्मा जी ने हमको कहा तो तुम भी हे महाभागे, वास्तव में अदिति तुम महाभाग्यवती हो। यह कहने का मतलब यह है कि ये पयोव्रत की कथा भी, इसकी विधि को जो सुनेगा तो सुनना भी बहुत बड़ा भाग्य से होता, नहीं तो सुनने को भी नहीं मिलता। भाग्यहीन पुण्यहीन व्यक्ति को ये बात सुनने को नहीं मिलती, तो तुम महाभाग्यवती हो कि तुमको ये सुनने को मिला, तुमने ध्यान से सुना, तो सम्यक छीरणे न आने न सम्यक संपादित इस व्रत के द्वारा इसका आचरण करते हुए भज अव्ययम, तुम अविनाशी भगवान विष्णु का भजन करो। इस संसार में सब कुछ क्षीण हो जाता है, मृत्यु है, बुढ़ापा है, सब कुछ है, लेकिन भगवान का कुछ भी व्यय नहीं होता है। उनका शरीर कभी वृद्ध नहीं हो सकता, उनके लोक से कोई च्युत नहीं हो सकता है, उनका ज्ञान अक्षीण रहता है, इसलिए उनको अव्यय कहते हैं, कभी व्यय नहीं होता। और इस संसार में तो व्यय हो, रोज होता रहता है व्यय। नेचर क्योर में लोग जाते हैं तो उनके शरीर को लोग कई किलो घटाते हैं, व्यय कर देते हैं, खत्म। वी आय व्यय, शरीर घटता रहता है, और बुढ़ापा आते आते तो सारा सौंदर्य सारी शक्ति हवा हो जाती, खत्म। इसके बाद देह भी नहीं रहता है, पद नहीं रहता है, कुछ भी नहीं रह जाता, सब व्यय हो जाता है। भगवान अव्यय, तो ऐसे अव्यय अविनाशी परमात्मा भगवान विष्णु का तुम प्रेम से भजन करो। आत्मना शुद्ध भाव है ना, जिस मन में शुद्ध भाव है, यहां शुद्ध भाव का मतलब क्या है, केवल भगवान पर विश्वास करो, अन्य किसी पर नहीं, इसको शुद्ध भाव कहा गया। विष्णु पर ही भरोसा करो, उन्हीं से प्रेम करो, ऐसे शुद्ध भाव वाले मन से नियत आत्मा भजव्यम अव्यय पुरुष भगवान का भजन करो। और भी एक बात कह रहे हैं, नियत आत्मा, मन को और इंद्रियों को वश में करके। कई बार इंद्रियां डिस्टर्ब करती हैं, आदमी भजन करना चाहता है, करता भी है, लेकिन जीभ बहुत बहुत खाने को मांगती है, ये भी खाओ, ये भी खाओ, ये भी खाओ, लेकिन ये व्रत के दिनों में जीभ चटोरा नहीं रहना चाहिए। बोलिए ये सब नहीं, कुछ भी, अगर देवता लोग अमृत भी लाकर रख दे तब भी नहीं पीना चाहिए, और फिर ये पेप्सी आदि क्यों पिएंगे। नियत आत्मा, इंद्रियों पर निग्रह करके, वाणी से दूसरी बात नहीं बोलना, कान से सुनना नहीं, खान पान पर कंट्रोल बिल्कुल, भगवान के भजन में इस तरह 12 दिन करने के लिए कहो, तुम भजन करो। अयम सर्व अयम वही सर्वजाख्य सर्व व्रत मिदम स्मृतम तपहसार मिदम भद्रे दानम चेस्वर तर्पणम। इस यज्ञ को, इस पूजा को, पैव्रत को कश्यप जी कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने कहा है कि अयम वही सर्व यज्ञ, यह सर्व यज्ञ है। सर्व यज्ञ का अर्थ है कि अगर इस यज्ञ को किया जाए तो जितने भी शास्त्रों में यज्ञों का वर्णन है सब हो गया, इस व्रत को करने से सारा यज्ञ हो जाता है। और सर्व व्रत मिदम, और इस व्रत को करने पर शास्त्रों में वर्णित जितने भी बड़े बड़े सब व्रत हैं सब इसके अंदर ही है, सब हो गया, सारे व्रतों का पालन हो गया। तपह सारम, तपस्या का है, इसेंस है, सार है, इसका अर्थ है कि अगर ये कर लिया गया 12 दिन तो जितने भी लाखों लाख वर्षों में लोग तपस्या करते हैं सब इसके अंदर आ गया। और भद्र दानम, और यही सबसे बड़ा दान है, यही सबसे बड़ी तपस्या है, यही सबसे बड़ा दान है। क्यों? कि ईश्वर तर्पणम, यह जो व्रत है वो भगवान कृष्ण को संतुष्ट करने वाला, जिस व्रत से भगवान संतुष्ट हो जाए वही वास्तविक व्रत है। आगे इसी बात को वो कह रहे हैं, जब माता अदिति ने कहा कि अरे तो छोटा व्रत है 12 दिन का, आप कह रहे हैं कि यही तपस्या का सार है, यही दान शिरोमणि, यही सबसे बड़ा दान है, सबसे बड़ा व्रत है, सबसे बड़ा यज्ञ है, यदि कश्यप जी ने कह दिया कि ईश्वर तर्पणम, ये स्वयं भगवान को संतुष्ट करने वाला है, फिर उसी को कह रहे। जब माता अदिति चकित हुई कि छोटे से व्रत को इतना बड़ा बता रहे हैं, तब वो कहते हैं त एव नियमा साक्षात त एव च जमोत्तमा तपो दानम व्रतम यज्ञ जेन तुष्यत भक्षज। देखो नियम का ढाढ़ा मत देखो, ये नियम वो नियम, ये यम, यम का अर्थ है नो, नहीं करना, मैंने पापों से बचना, और नियम का अर्थ करना, यम नियम, तो वही नियम नियम है, वही यम यम है, वही तपस्या तपस्या है, वही दान दान है, वही व्रत व्रत है, वही यज्ञ वास्तव में यज्ञ है, जिससे भगवान कृष्ण संतुष्ट होते हैं। तो यही एक व्रत ऐसा है जिससे भगवान शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए अयम वही सर्व यज्ञ आख्या सर्व व्रत विदम स्मृतम, यही सबसे बड़ा यज्ञ है। ये सहज समझा जा सकता है, जिस नियम के पालन से, जिस व्रत से भगवान खुश हो जाए हृदय से, ठीक किया, जो इसको करना चाहिए वो कर रहा है। यह व्रत ऐसा है कि इसके जो खास करके नियम है, भगवान की पूजा करना, जप करना, कीर्तन करना, ये सब तो कभी भी किया जा सकता है, सालों भर किया जा सकता है, लेकिन किसी खास मनोरथ की पूर्ति के लिए कोई करना चाहता है, वो चाहे जितना भी बड़ा मनोरथ हो, वो सब पूरा हो जाएगा यदि इस नियम का पालन किया जाए 12 दिन तक। तो और सारे नियम तो दैनिक हैं वैष्णवों के लिए, उनको तो जीवन भर करना चाहिए, पर इस व्रत की विशेषता बताते हुए कश्यप जी कहते हैं कि यही सर्व यज्ञाख्य, इसका नाम है आख्य माने संज्ञा, इस व्रत का नाम है सर्व यज्ञ। सर्व यज्ञ का अर्थ श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, इसका मतलब है कि इसको करने पर सारे यज्ञ अपने आप हो जाते हैं, सारे यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, राजसीय यज्ञ, और भी दुनिया में जितने यज्ञ हैं सब इसके अंदर है, और यही सर्व व्रतम कहा जाता है। और यही इस तरह से ऐसे ले सकता है, यही सर्व तप, सर्व दानम, यही है। अगर ये कर लिया तो सारा दान कर चुका, सारा तपस्या कर चुका, तीर्थ स्नान कर चुका, यम नियम आदि का पूरा पालन कर चुका, सारा यज्ञ कर लिया, सारा व्रत कर लिया, क्योंकि यह ईश्वर तर्पणम, यह भगवान को कृष्ण को तृप्त करने वाला व्रत। इसे समझ में आ रहा है कि यदि कोई व्यक्ति भक्ति करता है, भगवान से प्रेम करता है, तो वो भगवान को सुख दे रहा है, भगवान ऐसे भक्तों को देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं, और यही जीव का धर्म है भगवान को संतुष्ट करना। तो वही नियम नियम है वास्तव में, वही यम यम है, वही तप तप है, दान व्रत या यज्ञ, जिससे भगवान विष्णु संतुष्ट हो। तो सीधी बात है, कोई भी व्रत कोई भी नियम है, यदि उससे भगवान संतुष्ट होते हैं, खुश होते हैं, तो वही वास्तविक व्रत है। और यदि भगवान संतुष्ट नहीं हुए जिस व्रत से, उस व्रत में दम क्या है? कोई बहुत नियम पालन कर रहा है और यम भी, यह छोड़ा वह छोड़ा, उपवास किया सब किया, लेकिन भगवान उसे प्रसन्न नहीं है, तो क्या है उसमें दम? तो वास्तविक तो व्रत तप यज्ञ दान वही है जिससे भगवान संतुष्ट होते हैं। तो यह ऐसा है, तस्माद् एतद् व्रतम् भद्रे प्रयता श्रद्धया चर भगवान परितुष्टस्ते वरान आशु विधास्यति। इसलिए हे भद्र, तुम्हारा तो आचरण स्वभाव पहले से ही मंगलमय है, तुम सती स्त्री हो, धर्म में रही हो, भद्र शब्द से है, तो तुम प्रयता इंद्रियों पर निग्रह करके एकाग्र चित से और श्रद्धा से एतद् व्रतम चर, इस व्रत का आचरण करो। ऐसा करने से भगवान परितुष्ट, भगवान तुम पर संतुष्ट होंगे, और ते तुमको वरान वर आशु विधासत, बहुत शीघ्र तुम्हारे मनोरथ को पूरा करेंगे, बहुत शीघ्र तुम्हारे मनोरथ को पूरा करेंगे। कितना सुंदर उपदेश कर रहा है पति अपनी पत्नी से, ये करो, भगवान की भक्ति करो, ऐसे करो, भगवान तुम्हारा मनोरथ पूरा करेंगे, तुम चिंता मत करो, मतलब भगवान तुम्हारे पुत्रों को स्वर्ग देंगे, तुम जो चाहती हो सब देंगे, वरान सब बहुवचन में है, तुम्हारे हृदय में जो इच्छा होगी भगवान पूरा करेंगे। और वास्तव में भगवान जब देते हैं कोई वस्तु तो प्रसाद बनाकर देते हैं, वो राज्य वो भोग वो वैभव भक्त को फिर बंधन में नहीं डाल सकता। दूसरे जो देवता देते हैं वे लोग देते हैं वस्तु, एक तो कम देते हैं, और वस्तु देते हैं भोग देते हैं तो उससे उनका भक्त बिगड़ कर माटी हो जाता है, खत्म हो जाता है। जैसे भगवान शिव ने रावण को वर दिया, लेकिन रावण एक नंबर का गुंडा बना, बदमाश, दुनिया से कई जगह से वो स्त्रियों को जबरदस्ती लाता था और उसी दफा में वो सीता जी को ला दिया, मारा गया। तो हृदय शुद्ध नहीं होता। भगवान जब भोग देते हैं, जैसे ध्रुव महाराज को दिया उन्होंने, महाराज युधिष्ठिर को दिया, अम्बरीश महाराज को दिया, प्रहलाद महाराज को दिया, तो वो धन देने के बाद भी ये भक्तों को देखा गया है एक नंबर के महात्मा सदाचारी। तो वो भोग है भक्तों को दूषित नहीं कर पाते, लेकिन देवताओं का जो प्रसाद है उनके द्वारा दिया हुआ राज वो दंड बना देता है। ब्रह्मा जी ने हिरण्यकश्यप को वर दिया, माता दुर्गा जी ने कंस को वर दिया, लेकिन ये सब एक नंबर के बदमाश होकर निकल गए। तो कोई जीवन में गुण नहीं, कुछ नहीं। अपना लड़का भगवान का भक्त हुआ तो उसको बिल्कुल माथा दर्द करने लगा, क्यों भक्ति कर रहा है, और देवताओं को सताना है करना। और कंस दुर्गा जी का भक्त था और अपने खास बहनोई के, अपने बहन के पुत्रों को कत्ल कर रहा है, मार रहा है। देखिए दुर्गा जी के भक्त की दशा। लेकिन भगवान जब कोई चीज देते हैं तो उस भक्त को पूरा पूरा शुद्ध कर देते हैं, और बाद में उसके मन की कामनाएं भी शांत हो जाती हैं और भगवान से विशुद्ध प्रेम करने लगता है। ये भगवान का स्वभाव है। दूसरे देवता तो ऐसे हैं कि अगर कोई उनका भक्त कहे कि हम जहर पीना चाहते हैं, इतना तप किए भजन किए हमको जहर चाहिए, तो देवता दे देंगे, मरो चाहे कुछ भी, तुम्हारी इच्छा पूरी होनी चाहिए। ये भागवत में कथा है। एक वृकासुर नाम का असुर नारद जी से पूछा कि नारद जी आप कृपा करके बताइए कि तीनों देवताओं में कौन जल्दी प्रसन्न होता है, उनको जल्दी उसको खुश करके कुछ बर लेना। तो श्री नारद जी ने कहा कि भगवान विष्णु तो बहुत देर के बाद प्रसन्न होते हैं, लेकिन प्रसन्न होने के बाद फिर कभी क्रोध नहीं करते हैं, खुश आए तो जीवन खुश रहते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी और शिव जी जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो वो कहा कि नहीं, इन दोनों में बताइए कौन जल्दी होगा। तो उन्होंने कहा कि शिव जी को आशुतोष कहते हैं, आशु माने शीघ्र, तोष माने खुश, वो बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं, लेकिन बहुत जल्दी रंज भी होते हैं। तो कोई बात नहीं, हमको खुश होने का गुण चाहिए। तो वो गया केदारनाथ हिमालय में भगवान शिव जी के पास और तपस्या करने लगा, हवन करने लगा, ओम नमः शिवाय ये कह कह करके आहुति देता था, आहुति देता था। तो अपने शरीर का मांस काट काट कर समर्पण कर रहा था अग्नि में, फिर भी भगवान शिव प्रकट नहीं हुए। 5 दिन ऐसा किया, 6ठे दिन कहा कि ये तो प्रकट नहीं हो रहा है, तो अपना मस्तक तलवार से काटने जा रहा था अर्पित करने के लिए अग्नि में। जो काट चुका था आधा, वो काट करके और मस्तक अर्पित करने जा रहा था। वो सुना था कि रावण मस्तक अर्पित किया था तो उसको 10 मस्तक दे दिया शिव जी ने, 1 मस्तक अर्पित किया था। ये भी ऑर्डर दानी है, कुछ हिसाब किताब नहीं रखते हैं कि ये बिगड़ेगा कि क्या होगा। उसको 10 मस्तक देने की क्या जरूरत थी, 1 मस्तक भी उसके लिए फालतू था। और दे दिए 10 मस्तक। मैं भगवान शिव पर विनोद कर रहा हूं, हमारी बहुत श्रद्धा है भगवान शिव के प्रति, लेकिन जहां अपने इष्ट देव का कृष्ण का वर्णन शास्त्रों में किया गया है, तो कोई ये भ्रम न करे कि ये शिव जी और भगवान बस ये कहीं हैं। इस भ्रम के निवारण के लिए कभी कभी ऐसे शब्द बोल दिए जाते हैं, 10 मस्तक देने की क्या जरूरत है, अरे भगवान शिव दिए हैं, हमारा क्या पोजीशन है कि मैं आलोचना करूं कि क्यों 10 मस्तक दिए। लेकिन फिर भी लीला में देखिए तो रावण को 10 मस्तक दिए थे, तो वृकासुर जिसको भस्मासुर कहते हैं वो भी सोचा कि हमको ये वर देगा, तो जब ही मस्तक काटने जा रहा था अग्नि में डालने के लिए तो भगवान शिव प्रकट हो गए, और प्रकट हुए तो पार्वती जी के साथ प्रकट हुए। देखिए उसके मन में गंदा बुरा विचार। तो शिव जी ने कहा, क्या कहा, अरे बेटा मैं तो केवल बेलपत्र और पानी चढ़ाने से भी प्रसन्न हो जाता हूं, मस्तक क्यों काट रहे हो। नहीं नहीं नहीं, मस्तक मत काटो, मांगो मांगो क्या वर चाहिए। तो देखा तो परम सुंदरी स्त्री शिव जी के बगल में खड़ी है पार्वती। उसके मन में तुरंत विचार आया, अगर यह मर जाता किसी उपाय से तो मैं इस औरत को रख लेता। उसके मन में विचार है, भागवत की कथा है, शिव जी का भक्त ये सोच रहा है। देखिए तो उसने कहा, तुरंत कहा, सरकार हमको वर दीजिए कि मैं जिस किसी के मस्तक पर हाथ रखूं वो मर जाए। और ये सोचा कि ऐसा वर देगा इसकी बात झूठी हो नहीं सकती है, इसी के मस्तक पर हाथ रख कर इसको मार दूंगा और इस स्त्री को ले जाऊंगा। बाप रे बाप, ऐसा कोई डिवोटी होता है? अपनी इष्ट देव के साथ ही ये छल कर रहा है। अगर भागवत में कथा नहीं होती तो हम भी विश्वास नहीं करते कि ये सब सच्ची कथा है, लेकिन भागवत पे बात कही जा रही है। तो भगवान तो वचनबद्ध थे, भगवान से उन्होंने कहा कि मांगो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। तो उसने कहा कि ऐसी कृपा कीजिए कि मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं वह मर जाए। एक तो वर कितना दूषित मांग रहा है, अगर वास्तविक सच्चा अच्छा आदमी होता तो कहता कि ऐसा वर दीजिए कि मैं जिसके मस्तक पर हाथ रख दूं सारे रोग से मुक्त हो जाए, चिरंजीवी बने, वो कभी न मरे, ऐसा मांगना चाहिए ना। ऐसा मांगना चाहिए, वैष्णव लोग ऐसा ही मांगते हैं अगर मांगना होता है। लेकिन वो देखिए तो भगवान तो वर दिए, कहे ठीक है, और जेम कहे तेम लपक करके उनके मस्तक पर हाथ रखना चाहे। शिव जी चले भाग, अपने ही वचन के बंधन में भागे, लेकिन भागने में वो भगवान कृष्ण का ध्यान करने लगे कि हे नाथ, इस संकट से हमको बचाइए बचाइए। तो भगवान ने तुरंत सुन लेते हैं भक्त की प्रार्थना। तो वो खदेड़ रहा था शिव जी को, कई किलोमीटर हजारों किलोमीटर में भगा ले गया जोजन में। शिव जी हाँफ रहे थे हाँफ रहे थे ऐसे, और पीछा नहीं छोड़ रहा था। अंत में भगवान कृपा करके शिव जी और बृकासुर के बीच में आ गए। बहुत दूर शिव जी भागे थे, तो शिव जी जिधर भागे थे उधर से भगवान एक ब्रह्मचारी के रूप में आने लगे। ये नहीं दिखा रहे थे मैं भगवान, एक ब्रह्मचारी ब्राह्मण के रूप में। तो आते आते उन्होंने कहा, अरे शकुनी जी, उसका नाम शकुनी था, ब्रिक, शकुनी भी कहते थे उसको, ब्रिक, ब्रिकासुर नाम था उसका। अरे ब्रिक जी, अरे शकुनी जी, अरे आप इतना क्यों परेशान हैं? अरे आराम से जीना चाहिए जिंदगी में, इतना हावड़ तोड़ क्या, क्यों भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे, इतना परिश्रम क्यों कर रहे हैं? तो कहा कि हमको बताने की फुर्सत नहीं है, हमारा एक बहुत जल्दी काम है। लेकिन वो ब्राह्मण के रूप में भगवान थे तो अच्छे वचन बोले कि रुक जाए, अरे भाई कभी कभी आदमी किसी मित्र की सहायता से अपना प्रयोजन पूरा कर लेता है, क्या मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ, क्या है आपको हड़बड़ाहट है, क्या चाहिए क्या चाहिए? तो भगवान के बात में फंस गया। तो उसने कहा, ऐसा है ब्राह्मण देव, ये जो है शिव ये बहुत शक्तिशाली देवता है, ये जो कहता है झूठा नहीं होता है। ऐसा है कि मैं, मुझको ये वर दिया कि जिसके मस्तक पर हाथ रखोगे वो मर जाएगा, मैंने वर मांगा तो दिया, तो मैं चाहता हूं कि इसके मस्तक पर हाथ रख करके इसे बीबी को ले जाओ, ये मैं सोचा हूं। तो भगवान तो बहुत ठीक जानते, भगवान ये वर दिया है, कब से वर देने वाला बन गया, अपना कोई ठिकाना है ही नहीं, न घर बांधा है, न ये श्मशान में रहता है। जब से इसके ससुर ने साप दिया है दक्ष प्रजापति ने, आप सुने होंगे ना, तब से पिशाच हो गया, इसका दिमाग काम नहीं करता है, कभी नहाता नहीं है, जटा बना हुआ है, इतना घनघोर राख लपेटता है, हड्डी का गहना पहनता है, इसकी बात पर आप विश्वास करने लगे, बहुत दुख की बात है, इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति और इस पिशाच इस भूत की बात पर विश्वास कर रहा है। आप विचार नहीं करते, अगर इसको वर देने की शक्ति होती तो ये घर नहीं बनाता, सोना का गहना नहीं पहनता, कंघी सोडा साबुन नहीं लगाता, एक साफ देह नहीं रखता, तब वो भगवान की बात से कन्विंस हो गया, कहा कि वो तो मैं तो बेकार हैरान हुआ इतने बहुत हैरान हुआ, तब अब क्या करना चाहिए। तो भगवान ने कहा रे आप इतना भ्रम में रहे, हाँ एक बात जरूर है कि ये लोगों को फंसाया ना करे, झूठा वर न दे, इसलिए इसको मार दीजिए। और पहले तो आप वर का टेस्ट क्यों नहीं करते, आप इस पर विश्वास कैसे करते हैं? अगर आपको इस्टीमेट करना हो, टेस्ट करना हो कि इसके वर में शक्ति है नहीं, तो अपने मस्तक पर हाथ रख क्यों नहीं उसी समय देख लिए, और ये मैं तो भूल ही गया, ये तो सर में पा रहा था। और भगवान के कहने से तुरंत उसने अपने मस्तक पर हाथ रखा और धड़ाम से गिर कर मर गया। भगवान शिव का ऐसा वर था। लेकिन जरा विचार कीजिए, जिसके वो पूजा किया है 6 दिन कम से कम किया ना, 12 दिन का तो ये व्रत, जो 6 दिन का इतना उत्कट व्रत किया लेकिन बुद्धि थोड़ी भी शुद्ध नहीं हुई, पार्वती जी के प्रति बुरी निगाह हो जाना, माता पार्वती जी के प्रति, देवी के प्रति, और अपने इष्ट देव भगवान शिव की धर्मपत्नी, उसके प्रति जब इतना बुरा निगाह हो सकता है, तो अब क्या बाकी रहा कि उसे जीवन में दोष की कमी। तो इस तरह से यह सत्य है कि भगवान के भक्ति से ही, विष्णु के भजन से ही व्यक्ति शुद्ध होता है, सुखी होता है, सच्चरित्र बनता है, सदाचारी बनता है। इसलिए जिस व्रत से भगवान प्रसन्न हो वही वास्तव में व्रत है, वही यज्ञ है, वही दान है, तप है, जो कुछ भी है। अगर कष्ट सहना है, तपस्या करनी है, तो भगवान की भक्ति करनी चाहिए। सवेरे उठिए, मंगल आरती कीजिए, जप कीजिए, भगवान के बारे में सुनिए, भगवान की पूजा कीजिए, अतिथियों का स्वागत कीजिए, वैष्णवों को खिलाइए, यही दान है वास्तव में, ये दान है। तो देवताओं के पिताजी कश्यप जी बात कह रहे अपनी पत्नी से कि तयव नियमा साक्षात तयव तजमोत्तमा तपोदानम व्रतम यज्ञ जेन तुष्य तदोक्षत। एक व्यक्ति हमसे पूछ रहा था कि तो महाराज इस व्रत को करने से पुत्र मिलेंगे? मैं कहा कि हाँ, यदि पुत्र प्राप्ति की इच्छा है तो पुत्र मिलेंगे, लेकिन पुत्र बहुत गुणवान मिलेंगे। माता अदिति ने व्रत किया तो उसको भगवान ही पुत्र के रूप में मिले, और भगवान ने अपने मां के मनोरथ को पूरा किया। तो इसके बाद सुखदेव गोस्वामी कथा कहते हैं कि अपने पति कश्यप जी के शिक्षा से माता अदिति ने व्रत करना प्रारंभ किया, और व्रत जब पूरा हुआ, 13वें दिन सारा खिलाना पिलाना सब कुछ हुआ, इस तरह से उसने पूजा किया। सुखदेव गोस्वामी 2 श्लोकों में माता अदिति के तपस्या का वर्णन कर रहे, कितना मन उसका भगवान में एकाग्र था। तो उस एकाग्र मन से जब उसने भगवान की पूजा किया 12 दिन, तो भगवान प्रकट हो गए अदिति के सामने, एकदम प्रकट हो गए। उसमें क्या क्या दशा हुई अदिति की, मैं कल वर्णन करूंगा, अब ये अध्याय जुड़ रहा है। तो माता अदिति के भक्ति का मुझे वर्णन करना है, जो प्रत्येक भक्तों को सीखना चाहिए, किस तरह से उसने अपने इंद्रियों पर संयम करके मन को पूरा पूरा कृष्ण में लगा दिया, पूरा पूरा, अरे हवन करना, जप करना, कीर्तन करना, पूजा करना, ब्राह्मणों को खिलाना, और लोगों से कथा सुनना, कोई भक्त किसी भक्त के द्वारा हमेशा कथा सुनती थी और जप करती थी, वहां घर में कीर्तन होता था, नृत्य होता था, ये सब एकदम 24 घंटा भगवान में मन विभोर रहा, क्यों नहीं भगवान प्रकट हो जाएंगे। ऐसा तो व्रत वास्तव में हम लोगों ने सुना होगा कभी नहीं कि 12 दिन में भगवान प्रकट। हम लोगों को कभी कभी आश्चर्य होता है कि ध्रुव महाराज के सामने भगवान प्रकट हुए 6 महीने में ही, बहुत कम दिन, लेकिन ये तो सुनने पर और ज्यादा खुशी होती है, भगवान के स्वभाव का पता लगता है। 12 दिन के अंदर भगवान प्रकट हो गए, और माता अदिति से भी बात करते हैं प्रकट होकर के, और बातचीत में उन्होंने यही कहा, मुझे मालूम है कि तुम्हारे हृदय में क्या है, तुम चाहती हो कि तुम्हारे पुत्र राजा बने और असुर सब मारे जाएं, उनकी स्त्रियां रोवे। भगवान स्पष्ट बोल रहे थे, लेकिन वो कहते हैं देखो देवी, इस समय असुरों से पार पाना कठिन है, क्योंकि ये सब असुर इस समय धर्म में लगे हुए हैं, मेरी भक्ति में है, और इस कारण से ब्राह्मणों की इन पर कृपा है, मैं उनसे युद्ध नहीं कर सकता। वास्तव में भगवान अच्छे कर्म करने वालों को क्यों मारेंगे, ये समस्या है ना। और कोई दूसरा होता तो कहता हाँ हम उनको मार देंगे, कत्ल करेंगे, लेकिन भगवान ने कहा नहीं, हम युद्ध नहीं कर सकते। अपारणी आई थी देवी में मति, ये मेरा विचार है उनसे पार पाना कठिन है और मैं युद्ध नहीं कर सकता, धर्म पर चलने वाले को, भक्ति करने वाले को मैं कैसे मार सकता, और ब्राह्मणों के जिन पर कृपा है वो यज्ञ कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, उनको मैं नहीं मार सकता, फिर भी तुमने मेरे लिए व्रत किया है, मेरी भक्ति किया है, तो मैं तुम्हारी इच्छा को पूरा करूंगा। कैसे इच्छा को पूरा करेंगे, तो भगवान कहते हैं मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा, और पुत्र बन करके बलि महाराज से जाकर के भिक्षा मांगूंगा छल से, और तुम्हारे पुत्रों को मैं राज्य दे दूंगा, मतलब अपने भाइयों को। और यह कहकर भगवान कहते हैं देखो, यह बात पूछने पर भी किसी से मत बताना कि भगवान हमारा पुत्र बनेंगे, क्योंकि हमको जाना है भिक्षाटन करना, भीख मांगना है बलि से, तो ये सब बात खोलना मत, किसी से मत कहना। पृष्ठयापि कथंचन, अगर कोई पूछे भी तब भी मत बताना कि ये तुम्हारा पुत्र कौन है, इसका भूत भविष्य दिखाओ बताओ कौन, पूछने पर भी मत बताना, कश्यप जी से भी मत बताना। यहां तक भगवान ने कहा, लेकिन कश्यप जी भक्ति के बल से जान गए कि भगवान हमारा पुत्र बने, अदिति के गर्भ में आए, और जब भगवान का जन्म हुआ तो उस समय सारी प्रकृति शुभ गुणों से संपन्न हो गई, ग्रह नक्षत्र सब अनुकूल हो गए, देवता फूलों की वर्षा कर रहे थे आकर के अलक्षित वहां आश्रम पर, फूलों की वर्षा कर रहे थे, गंधर्वगण गा रहे थे, बाजे बज रहे थे, सब बहुत वर्णन है विस्तार से, और जूटे सब वहां पर, बृहस्पति जी जूटे और बड़े बड़े देवता आए और भगवान को उपहार दिए, उनका उपनयन संस्कार हुआ। जिस दिन उपनयन संस्कार हुआ तो उस दिन कथा हो रही थी, तो किसी ब्राह्मण ने बलि महाराज के बारे में कहा कि वो बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, दान दे रहे हैं, तो ये सुन करके भगवान कहे बलि महाराज इतने बड़े दाता हैं, तो मेरी भी इच्छा है कि मैं कुछ उनसे दान मांग। तो इनके पिताजी माताजी तो जान गए थे, उन्होंने कहा ठीक है जाओ, तो भगवान चले हैं बलि महाराज के यज्ञ में। बलि महाराज के यज्ञ में भगवान जब जाएंगे तो भगवान की अगर इच्छा रही तो ये कथा मैं अगले साल कहूंगा, कैसे बलि महाराज से मिलते हैं। अभी तो इस सत्र में भगवान के जन्म को ही मैं पूरा कर पाऊंगा, भगवान के दिव्य जन्म के विषय में सुनना चाहिए कैसे कैसे प्रकट हो रहे हैं, और ये इच्छा है हमारी और भक्तों की भी इच्छा है कि जो श्रोता इतने दिन तक सुने हैं भगवान के गुणों को वे कुछ बोले, इच्छा होनी चाहिए सुनने की, वो कुछ बोले भगवान के विषय में। तो हम लोग कल से अनुमोदन भी प्रारंभ करेंगे, तो कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक भक्तों को समय दिया जाए, मतलब कम कम समय संख्या में अधिक भक्तों को, मेरा यही तात्पर्य, वो समय दिया जाए, पर समय तो बहुत कम रहता है, तो मेरी इच्छा है कि जो भी भक्त कुछ भगवान के बारे में बोलना चाहे वो लिख लें, लिखें चाहे एक पृष्ठ दो पृष्ठ जो भी थोड़े में लिखना चाहिए, अपने सुख को अपने मोद को व्यक्त करना चाहिए, हमें बहुत अच्छा लगा, ये लगा आगे होना चाहिए, इसको अनुमोदन कहते हैं। तो भक्तों के भाव भगवान के प्रति प्रकट होते हैं, तो ये आग्रह है बिना है कि आप थोड़े थोड़े में जिसको पांच मिनट में पढ़ सकें चार मिनट में पढ़ सकें लिख लेना चाहिए। और जिनको अगर मान लीजिए अवसर नहीं मिला पढ़ने का अपना अनुमोदन, तो अनुमोदन का पत्र हमको दे, हम पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे लिए ही किया जाता है, जनता के लिए भी किया जाता है। लेकिन हमें उसे पढ़ करके बहुत आनंद आता है कि ये भक्त का ये भाव है भगवान के प्रति, ये भाव, ये भाव, अपने भावों को, अपने भावों के पुष्प को भगवान में अर्पित करना चाहिए। तो कल से ही हम थोड़ा थोड़ा चालू करेंगे, परसों भी होगा, कथा भी होगी, अभी तो दो अध्याय की, डेढ़ अध्याय की कथा बाकी है। तो आप लोग अनुमोदन जरूर लिखिएगा। मैं कथा में बहुत कठोर शब्दों का जो प्रयोग कर दिया था एक दिन, खास करके देवताओं के बारे में मैं जो हीन वाक्य बोल देता हूं, हमारा आशय उनका अपमान करना नहीं है। और मैं इस विषय में ये समझता हूं कि मुझे जानकारी है कि ये देवता सब भगवान के प्रतिनिधि हैं, बड़े बड़े भक्त हैं, बड़े पदों पर हैं, लेकिन फिर भी जब शास्त्र भागवत के अनुसार बोलना होता है तो भगवान की ही महिमा का वर्णन करना चाहिए। तो इसलिए उस आवेश में मैं कुछ हीन शब्द बोल देता हूं। भगवान शिव के चरणों में मैं बार बार क्षमा मांगता हूं कि हमसे कोई अपराध न हो। माता दुर्गा जी, गणपति जी, ये सभी एक प्रकार से ईश्वर ही हैं अपने अपने पदों पर। अगर ईश्वर शब्द की व्याख्या की जाए, इस प्राकृतिक जगत के यही वास्तव में इंचार्ज हैं, पर सर्वेश्वर भगवान विष्णु है, ये बात ध्यान में रखना चाहिए। और मेरी बातों से अगर किसी को कष्ट हुआ हो कि मैं कभी कभी किसी मनुष्य पर, साधु पर आक्षेप किया, हमारा आक्षेप करना आशय नहीं था। हमारा आशय है अपने प्रभु कृष्ण का गुण गाना भागवत के अनुसार। तो उस आवेश में अगर कोई बात निकल रही है तो हमारे आशय को समझ करके आप हमें क्षमा करेंगे। हमारी ये कभी प्रवृत्ति नहीं रही कि मैं किसी साधु पर आक्षेप करूं या किसी दूसरे पंथ वाले पर आक्षेप करूं, देवताओं की निंदा, देवताओं की निंदा तो मैं सुनता भी नहीं। कभी कोई अगर कुछ कहता है तो मैं प्रतिकार करता हूं, लेकिन भागवत कहते समय जैसे कपिल देव यानी कश्यप जी ने कह दिया कि अमोघा भगवत भक्ति नेत्रेति मतिर्मम, वो ये बात कह रहे हैं कि भगवान की भक्ति निश्चित सफल होती है, फल देती है, लेकिन दूसरे की भक्ति नहीं। उस श्लोक की व्याख्या में मैं कुछ सीमा से बाहर बोल दिया, तो इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। और आप सब भगवान की भक्ति कीजिए, जप कीजिए, सुन ही रहे हैं, ये सब उपदेश होते हैं अदिति के लिए ही नहीं है, हम सबके लिए। जप करना चाहिए, भगवान के मंदिर में आना चाहिए, पूजा करना चाहिए, भगवान के लिए, भक्तों के लिए दान देना चाहिए, ये धर्म है। हरे कृष्ण, जय श्री प्रभुपाद।